स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का।
बाउंस बैक भारत। दिस इज द मोमेंट ऑल ऑफ अस हैड बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। बहुत बहुत खुशी है, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू वेलकम वो जो है सब के आंखों का तारा, जिन्होंने झंडा ऊंचा रखा हमारा, ऐसे जैवलिन थ्रो किया, सब हिंदुस्तानियों ने अपना दिल इनको दिया, द वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नीरज कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल बढ़िया जी।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत ही आराम से प्यार से अपने सोफे पे बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आई होप ये खुशी आपको जाहिर हो रही है कि हम बहुत प्राउड हैं और बहुत आपको प्यार, एंड दिस आई एम सेइंग अपने तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम फीवर 104 FM हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल योर फैंस, वी लव यू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू।
थैंक यू सो मच जी।
और ऑल्सो आपको मैं तसल्ली दे दूं कि आपके आज कल इंटरव्यू बहुत ट्रेंड हो रहे हैं अलग अलग वजह से, बट दिस विल ट्रेंड फॉर ऑल द गुड रीजन।
ठीक है जी, ठीक है।
कोई तकलीफ तो नहीं आपको?
नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम।
पहले इंडियन बने आप जो गोल्ड लेके आए हैं ओलंपिक्स में इन एथलेट, ठीक है। अब लीडिंग अप टू दिस तो आपने बहुत मेहनत करी, हमने आपके बड़े ट्रेनिंग वीडियोस देखे, सब हैरान हो गए कि ये इंसान, इसकी बॉडी रबड़ की बनी है, क्या है, लाइक हाउ इज ही डूइंग दिस। बट इसके बाद का ये जो है सब, ये जो सारा अटेंशन है, इसके लिए हमने प्रिपेयर किया था, एक्सपेक्ट किया था कि इतना मीडिया अटेंशन और इतना प्यार मिलेगा आपको सबसे?
हाँ, दिमाग में तो था कि हाँ, अगर मेडल आएगा तो जरूर ये चीज थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि एथलेटिक्स में था नहीं पहले और काफी एक वेट था एथलेटिक्स मेडल के लिए। हाँ, लेकिन साथ के साथ ये भी था कि हाँ, थोड़ी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, बस फंक्शंस और ये चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज आगे जाके थोड़ी अच्छी हो सकती है कि हाँ, कि ये खुशी की भी एक अच्छी बात है कि हाँ, हम मेडल जीतते हैं, खुशी है उस बात की, पर एक एथलीट का जो मेन काम है ट्रेनिंग करना और अगले कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करना, वो चीजें भी साथ के साथ हमको मेंटेन करनी पड़ेगी इस चीज के साथ।
Honestly, salute आपके spirit को, and तभी we wanted you to come for the Bounce Back Bharat Fest, क्योंकि आप जिस तरीके से, जो हमने आपके आपकी इंजरी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से यू वर लिटरली हॉस्पिटल बेड से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और इस लेवल ऑफ फिनेस एंड कॉन्फिडेंस में कि जब आपने वो फाइनल जैवलिन थ्रो किया, बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यू वर सेलिब्रेटिंग, यू न्यू इट वॉज योर बेस्ट शॉट, विच सेज सो मच अबाउट योर ट्रेनिंग। आपकी जो ये बाउंस बैक स्टोरी है, अगर आप हम सबके साथ शेयर करें, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इंस्पायरिंग।
हाँ जी, वो इंजरी के बारे में मैंने काफी बार बोला भी है कि एक एथलीट की लाइफ का पार्ट है इंजरी, एक खिलाड़ी को, मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स में तो खासकर इंजरी होती है। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम को, मतलब उस टाइम से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे इंजरी हुई या इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे अपने और चीजों पे या अपने माइंड पे और ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग से तो उस टाइम रेस्ट पे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड काफी चलता है उस टाइम पे, तो हम सोच सकते हैं कि अभी आगे ट्रेनिंग कैसे करनी है और आगे कैसे प्रिपेयर होना है। तो वो चीज मुझे लगता है कि इंजरी का जो टाइम होता है वो काफी कुछ सिखाता है हमको कि इंजरी किस वजह से हुई और हमको उस टाइम पे क्या क्या हम सावधानी बरत सकते थे और किन चीजों से हम बच सकते हैं आगे। तो उस चीज के बारे में काफी माइंड सोचता है और फिर काफी और भी ज्यादा दिमाग में बातें आती है कि अभी ट्रेनिंग कैसे करनी है या फिर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो इंजरी का टाइम भी कहीं ना कहीं एक काफी कुछ सिखाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक जरूरी पार्ट है एथलीट की लाइफ में काफी कुछ सिखाने के लिए। और मैंने बिल्कुल काफी कुछ सीखा उस टाइम से और एक साल में कुछ खेला नहीं था लेकिन मेरा दिमाग में काफी कुछ चलता था कि आगे जब ओलंपिक्स आ रहे हैं उनकी कैसे तैयारी करनी है और कैसे माइंड को प्रिपेयर रखना है, किस टाइम हमको रुकना है ट्रेनिंग से क्योंकि कई बार हम करते रहते हैं और हमको मतलब कुछ इंजरी वगैरह के चांस भी होते हैं तब भी हम रुकते नहीं है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सीखने को मिले कि हमको किस टाइम पे रुकना है वो भी काफी जरूरी है।
एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना कि वो शेर दो कदम पीछे लेता है फिर ताकि आगे आके मार पाए। तो वही जो बाउंस बैक है, जब आपने बोला कि मैं खेल नहीं पाया पर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एंड एज एन एथलीट यू वुड नो कि फिजिकल फिटनेस जितनी जरूरी है उतनी ही मेंटल फिटनेस। तब आप क्या बोलते थे? आप भी तो नॉर्मल इंसान हो ना नीरज, आपको भी लगता होगा पता नहीं खेल पाऊंगा या नहीं, उठ पाऊंगा या नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ? नहीं, कभी नहीं सोचता?
नहीं, बिल्कुल आता है दिमाग में, तो आया था कि यार इस टाइम पे क्यों हुआ, क्योंकि बिल्कुल ओलंपिक्स पास में था, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला साल था और मेरे कॉम्पिटिशन बिल्कुल पास में थे। तो बिल्कुल दिमाग में आता है कि यार अभी बिल्कुल इतना पास में आके क्यों हुआ, कोई बात नहीं पहले हो जाता है बाद में हो जाता है, एक बार मैं अच्छे से खेल लेता। लेकिन पर धीरे धीरे पता चलता है कि ये कई बार कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, वो होनी होती है। अभी इंजरी हम कोशिश तो करते हैं बचने के लिए लेकिन पता नहीं लगता, क्योंकि हम अगर हम डेली अपने शरीर को इतना मतलब ट्रेनिंग करते हैं, इतना उसको एक फिटनेस के उस पे ऊपर लेके जा रहे हैं तो बॉडी भी कुछ ना कुछ वापिस हमको देती है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब इंजरी का पता नहीं लगता, हम अपनी तरफ से ध्यान तो रखते हैं लेकिन फिर भी हो जाती है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि खुशी रहना चाहिए अच्छे से, बस उसको जो भी है उसको कुछ कर तो सकते नहीं, वो अपने टाइम पे ठीक होगी इंजरी। बस कोशिश करो कि जो भी हम जिस टाइम में है उसमें खुश रहे बस, और उसको भी थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन तो खराब लगता है लेकिन उसको भी कोशिश करो कि उस टाइम को भी कहीं ना कहीं इंजॉय करना सीखें। तो वो इंजरी का टाइम भी बहुत कुछ सिखाता है, तो बिल्कुल उसमें खुश रहो। और मुझे लगता है खुश रहेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग पे और रिहैब पे फोकस करेंगे तो और जल्दी ठीक होंगे। अगर हम दुखी रहेंगे कि मुझे क्यों हो गई इस टाइम पे इंजरी बहुत ज्यादा, मतलब वो दिमाग में नेगेटिव बातें रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा और वो फिर रिकवरी में भी टाइम लेगी वो।
Absolutely, that makes a lot of sense. नीरज, हमारा देश ऐसा है एथलेटिक्स के लिए, लोग कहते हैं हमारी तो बॉडी भी शायद नेचुरली उतनी परफेक्ट नहीं है। इट्स अ कंट्री जहाँ पे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को यू नो सबसे बड़ा हम मानते हैं। आई थिंक द रीजन आपसे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना इंस्पायर हो रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो जैवलिन में जाना चाहे या ना जाना चाहे, बट इट इज योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस एंड फोकस। तो एक टिपिकल डे नीरज चोपड़ा की जिंदगी का ओलंपिक्स के पहले कैसे होता था, कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, वो जरा आप अपनी दिनचर्या हमें बताइए।
सुबह वैसे तो हम ट्रेनिंग के हिसाब से, मतलब अगर ट्रेनिंग 7:30 तक होती है तो 6:30 या 6:45 तक हम उठते थे, क्योंकि वो वाला नहीं चलाते थे कि 3-4 बजे उठ के ट्रेनिंग करनी है तभी हमको ट्रेनिंग अच्छे से इफेक्ट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा प्लान जो है कोच बनाते थे, हमारी मॉर्निंग 7 या 7:30 बजे ट्रेनिंग होती तो उसके हिसाब से उससे 30 या 45 मिनट्स पहले हम उठते थे। उठ के जो भी तैयार वगैरह होना है, अपना नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके, जो भी ट्रेनिंग का सामान होता था वो पैक करके, पूरा माइंड को प्रिपेयर करके ट्रेनिंग के लिए निकल जाते थे। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ब्रेकफास्ट अच्छे से करके और फिर दोबारा
क्या खाते थे, क्या होता था आपका टिपिकल ब्रेकफास्ट?
ब्रेकफास्ट में जो ज्यादातर मैं खाता था उसमें दलिया, ओट्स, थोड़ा दूध और थोड़े ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ ऑमलेट, अंडे, ऐसे कुछ होता था। और फिर उसके बाद हम कोशिश करते थे कि थोड़ा रेस्ट करें दोबारा से, क्योंकि आफ्टरनून में हमारी हैवी ट्रेनिंग रहती थी, मॉर्निंग में थोड़ी लाइट रहती थी।
ओके,
और फिर लंच में, लंच के लिए उठते थे, लंच में कुछ थोड़ा राइस वगैरह, दही, सैलेड, दाल, एक दो सब्जियां या फिर कुछ और चिकन वगैरह बना होता था तो वो खाते थे। और फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत काम होता है या हम नॉर्मल अपना लाइफ में जो करना चाहते हैं, कुछ भी कहीं किसी से बात करनी है फोन पे या फिर कुछ और काम है तो उसके लिए टाइम निकालते थे। उसके बाद शाम की ट्रेनिंग के लिए तैयारी हो जाती थी क्योंकि शाम की ट्रेनिंग 4 बजे के आसपास होती है तो फिर उसके लिए नहा दो के अच्छे से प्रिपेयर होके फिर, क्योंकि शाम की ट्रेनिंग हार्ड होती थी तो उसके लिए और अच्छे से थोड़ा तैयार होके जाना पड़ता था, माइंड भी प्रिपेयर करना पड़ता था। तो शाम की ट्रेनिंग बढ़िया से करके फिर उसके बाद आके डिनर वगैरह, और डिनर में वही एक दो सब्जियां या एक दो रोटी और जो चावल राइस या फ्रूट वगैरह होता था। और फिर उसके बाद थोड़ा हमको टाइम मिलता है, मतलब ज्यादातर की जो भी हम अपनी लाइफ के जो पर्सनल जो टाइम है उसमें थोड़ा सा हम कर सकते हैं सोने से पहले, तो उसमें कुछ भी जाए हमको कुछ करना है, मतलब गेम खेलने से लेके घर पे बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ बात करनी है या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई वगैरह भी करनी है तो उस टाइम पे हम करके फिर हम सो जाते थे। तो
ये तब तक सो जाते थे। आपका सोने का टाइम क्या था?
मैं अगर बताऊं तो मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के हिसाब से बड़ा ही एक लेजी टाइप का हूं रेस्ट के मामले में। ट्रेनिंग काफी अच्छे से करता हूं पर कहीं ना कहीं मैं जो एक एथलीट को डाइट का और अपने रिकवरी का सोने का ध्यान रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं मेरा इतना अच्छा नहीं है जो मुझे अभी सुधारना है। तो मैं ऐसे मतलब 12 बजे के आसपास या उससे भी कई बार लेट हो जाता था तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुझे और बेटर करनी पड़ेगी।
आप तो खुद से इतने स्ट्रिक्ट हैं, गोल ले आए हैं नहीं ना, जब आप 12 बजे सो सकते हैं कोई बात नहीं। तो जो आप बोलते कभी मन नहीं किया कि पराठे खाएंगे 11 बजे उठेंगे, वो कब होता था? होता था, मौका मिलता था?
हाँ मौका, संडे को हम वो चीज कर सकते थे लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ये सभी एथलीट के साथ शायद कि जिस दिन रेस्ट होता है वैसे हमको जिस दिन ट्रेनिंग होती है उस दिन हमको ज्यादा नींद आती है, जिस दिन रेस्ट होता है उस दिन हम बिना अलार्म के भी क्या पता 6 बजे उठते हैं सुबह। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार आज रेस्ट है, आज हमको मन था कि 9-10 बजे तक सुबह तक सोए पर अपने आप ही आंख खुल जाती है उस दिन और फिर हमारा मन होता है कि कल सुबह उठ के, संडे है और कल सुबह उठ के हम ऐसे पराठे खाएंगे या ये खाएंगे पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि फिर ट्रेनिंग ही चलती है माइंड में कि कल को फिर ट्रेनिंग करनी है और फिर ये पराठे इतनी अच्छी चीज नहीं है ज्यादा खाने, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज माइंड में चलती रहती है और वो रोक लेती है हमको।
क्या पसंद है आपको, आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, क्या पसंद है?
मैं सच बताऊं तो मैं खाने की चीजें, मतलब वो तो एक अलग बात है कि अलग अलग चीजें होती है लेकिन मैं खाने की चीजें कुछ भी हो उसमें ज्यादातर वेज, क्योंकि नॉन वेज मतलब काफी चिकन वगैरह खा लेता हूँ लेकिन वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि वेज में कुछ चाहे कुछ भी हो मुझे सब अच्छा लगता है। खाने की चीजें मुझे बहुत पसंद है।
मीठा पसंद है? मीठा और फ्राइड पसंद है?
हाँ जी बिल्कुल, मीठा भी फ्राइड भी कुछ भी हो मुझे बहुत पसंद है, बस कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज खानी चाहिए या ये नहीं खानी चाहिए तो वो चीजें भी जरूरी है।
परफेक्ट, यू नो दिस आई आस्क्ड बिकॉज़ सबको इतना इंटरेस्ट था कि लोग कहते ना कि इतना कमाल कर दिया, खाता क्या है ये बंदा, तो ये भी हमने पता लगा लिया कि आप
बस ट्रेनिंग के दिनों में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है डाइट के मामले में लेकिन वैसे तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ, खाने की चीजें मुझे काफी पसंद है और मैं काफी कम ऐसे जो है कमी निकालता हूँ खाने में कि इसमें ये कम है इसमें वो ज्यादा है, तो मैं खा लेता हूँ जो भी मिलता है।
बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट। आज पीछे मुड़ के देखते हैं नीरज, कौन सी चीज सबसे चैलेंजिंग थी जिसको आपने ओवरकम किया, कोई एक चीज, फैसिलिटीज या कुछ और आपके हिसाब से?
चैलेंजिंग तो मैं बताऊं जिस सब कुछ जो मेरा ग्राउंड से जो घर से ग्राउंड तक आना और ग्राउंड से वापस घर तक जाना वो भी काफी चैलेंजिंग था। उसके बाद काफी ऐसी चीजें थी, फैसिलिटी लगा लो या फिर डाइट का लगा लो या फिर स्टार्टिंग में जो भी जो एक सबसे बड़ी बात थी कि जो मुझे वेट करना पड़ता था बस आने का और फिर बस में बैठ के मैं ग्राउंड तक जाता था फिर पैदल ग्राउंड तक आगे का सफर होता था। उसके बाद ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो वेट होता था 1-2 घंटे का बैठ के एक जगह पे, तो वो जो वो चीज थी वो काफी एक मुझे लगता है कि काफी अगर अभी अभी भी मेरे सामने अगर वो परिस्थिति आए तो मैं कहीं ना कहीं अभी उस चीज को ज्यादा एक मुश्किल मानूंगा अपने लिए, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं माइंड कैसा था, मैं उस चीज को ज्यादा दिल पे और दिमाग पे लेता नहीं था, मैं वेट भी करता था, मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था, मेरे मन में भी नहीं आता कि मुझे और अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो भी जैसा मिला मैंने उसी में मेहनत की और वही उसी में अपने माइंड को ये रखा कि हाँ जो भी जैसे चल रहा है उसको उसमें मेहनत करनी है, तो वो चीज माइंड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं लेके आनी चाहिए, जैसी भी हमारे पास फैसिलिटी है जो भी है और जो बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकती है, तो अपने माइंड को बस ऐसे रखो कि बस हमको जैसा जो भी मिल रहा है उसी में ट्रेनिंग करनी चाहिए और बस ज्यादा मत सोचो, बस अपना ट्रेनिंग के उस पर फोकस रखो, और मुझे लगता है कि अगर हम ट्रेनिंग पे पूरा फोकस रख रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो हमको मिलना है वो जरूर मिलेगा, उसको वो भगवान देगा ही देगा।
अब इतने आसानी से इतनी बड़ी बातें बोल जाते हैं नीरज, तभी लोग शायद दे वांट टू सेलिब्रेट हमारे एथलीट्स, बिकॉज़ वो सिर्फ अपने कंपटीशन में चैलेंज फेस नहीं करते, वहां तक पहुंचने में वो इतने पहाड़ चढ़ चुके होते हैं, मुझे लगता है वो एक्चुअल गेम तो शायद बड़ी आसान हो, क्योंकि वहां तक पहुंचना हमारे देश में जो जो जिस तरह की सिचुएशन है आई थिंक बहुत मुश्किल होता है।
मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी हैं जो सभी मिडिल क्लास फैमिली से अपने यहाँ पे गांव से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, और सभी वो चैलेंज फेस करते हैं, मैं नहीं बोलता कि सिर्फ मुझे ये दिक्कत आई है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा भी कई एथलीटों ने दिक्कत झेली होंगी और वो आज बहुत ऊपर अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, तो अपने यहाँ पे ऐसे ही चलता है कि धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कई चीजें काफी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो है कि हमें अपने दिमाग में ये चीज पहले नहीं घुसानी चाहिए कि हमारे पास ये फैसिलिटी होंगी तभी हम ट्रेनिंग करेंगे, या फिर हमको ये सब मिलेगा तभी हम खेल सकते हैं, वरना तो इतना लेवल पे पहुंच नहीं सकते हैं, बस वही है कि ऐसा दिमाग में मत सोचो, बस आप करते जाओ और एक पागलपन उस चीज के लिए होना चाहिए जो जिस चीज को आप कर रहे हो, हाँ वो जुनून और वो जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे वो प्यार होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पसंद है, मतलब जनरली हम उस चीज को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके हम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी, वो चीज हमको पसंद है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है एक चीज होना।
बहुत ही बढ़िया। ओके नीरज, एक क्वेश्चन जो अभी सभी लोग, आप एक यूथ आइकन है, चाहे मैंने जैसे बोला लोग स्पोर्ट्स फील्ड चूज करें या नहीं, बट एवरीवन लुक्स अप टू यू, आप उन्हें क्या बोलेंगे? आप अब इस पोजीशन में हैं जहां आप लोगों को बता सकते हैं क्या सोचें क्या करें, एंड एवरीबॉडी वांट्स यू टू गाइड देम, क्या बोलेंगे आप?
जो मैंने अभी तक मतलब मैं अपनी लाइफ से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था जेवलिन, तो मैं इससे ही बता सकता हूँ कि भाई मुझे जेवलिन के बारे में कुछ पता नहीं था, अभी कई जो है कुछ किसी को डांस करना है या सिंगिंग करनी है वो थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं इस फील्ड में मैं कुछ कैसे कर पाऊंगा, या पर मुझे भी नहीं पता था कि मैं जेवलिन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, या मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, बस मैंने बहुत बड़े सपने नहीं लिए उस टाइम पे, बस मैं जो जब मैंने जेवलिन शुरू किया बस मेरे दिमाग में ये रहता था कि आज ये ट्रेनिंग थी, आज मैंने इसको अच्छे से किया, कल जो होगी कल उसको पूरे 100% अच्छे से अपना उसमें देना है, तो बस अपना जो डेली का जो ट्रेनिंग या जो हमारी जो काम होता है उसको अच्छे से करते जाओ, और ये जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी नहीं आती है, ये हमको बहुत टाइम और वेट करना पड़ता है, 2 साल से 3 साल भी लग सकते हैं हमको एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमको डेली ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे तो ये मिल नहीं रहा है, तो बस आप मेहनत पे विश्वास रखिए और वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, जो एक सक्सेस होती है या जो भी आपको मिलना होता है उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे आती है, ऐसा नहीं कि आप एकदम ओलंपिक में गोल्ड जीत जाएंगे 3 या 4 साल में, तो आपको अभी मुझे मैं 2011 में मैंने जेवलिन शुरू किया था, मैं 2021 में ओलंपिक में चैंपियन बना हूं, तो मुझे 10 से 10.5 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो वो पेशेंस कहीं ना कहीं जरूरी है, मतलब सबर हमारे मन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि ओवर डू करें कि भाई मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लूंगा तो मुझे जल्दी ये चीज मिल जाएगी, तो वो नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रोसेसिंग जो है वो उस पर विश्वास रखो कि वो स्लो चलेगी और अपने टाइम पे ही वो चीज हमको मिलेगी, तो वो चीज बहुत जरूरी है।
नीरज आपकी बातें सुनकर हम ये तो समझ गए कि जहाँ पे आप फोकस करते हैं वहां तो आप सीधा गोल्ड लेके आते हैं, है ना, कोई पीछे मुड़ के देखने की बात नहीं है। बट क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में लोगों को, कोई और चीज है जिसमें आप बहुत अच्छा है खाना बनाना या गाना गाना या कोई और स्पोर्ट? कोई आपकी
ऐसी? खाना, मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, क्योंकि 2011 में मैं घर से निकला था, काफी छोटा था और हम खुद खाना बनाते थे। हमने रूम लेके हम रहते थे तो हम खुद खाना बनाते थे, तो मैं काफी साल तक हमने खुद खाना बनाया। मैं जर्मनी भी गया था तो वहां पे भी हमने एक अपार्टमेंट लिया था तो खुद ही खाना बनाते थे वहां भी, तो खाना मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ।
गाना कैसे गाते हैं? खाना तो हो गया, गाना?
नहीं, गाना नहीं आता बिल्कुल भी। वो एक डांस की मेरी कुछ वीडियोस मैंने देखा वायरल हो रही है, तो वो मुझे डांस भी बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि जो वो फ्रेंड वगैरह की शादी थी तो हमारे जैसे मेरे दिमाग में उस टाइम यही चलता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे हम पसीना निकाल लेते हैं ना, तो वो इस तरीके से मैं नाच डांस कर रहा था कि उसमें कोई माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं डांस कर रहा हूँ, बस वही था कि बस हम कूद रहे थे ऐसे नॉर्मल। तो वो वीडियो पता नहीं किसने बना ली और अभी वो वायरल हो रही है। तो
आई लव दिस, दोस्त की शादी में भी इंसान को अपना फोकस याद है। आई थिंक तभी आप वहां हैं जहां आप पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, थैंक यू सो मच, इट्स बीन सो इंस्पायरिंग। फाइनल सवाल आपसे, बाउंस बैक तो आपने दिखाया है कि किस शानदार अंदाज से करते हैं, अब आगे क्या सपना है? गोल्ड तो ले आए, अब किस पे फोकस है आपका?
अभी अगले साल हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो मुझे लगता है कि अगला साल बहुत ही एक बिजी होने वाला है, क्योंकि हमारे काफी कॉम्पिटिशन हैं, तो बिल्कुल उनके लिए अच्छा प्रिपेयर करेंगे और बेटर, जो आज तक की मेरी परफॉर्मेंस है उससे बेटर करने की, और मैं अपना और बेस्ट करने की उसमें कोशिश करूंगा, और बिल्कुल उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं ट्रेनिंग में, तो पूरा अपना ट्रेनिंग अच्छे से करके और अपना पर्सनल बेस्ट मैं अगले साल करने की पूरी कोशिश।
नीरज जी, फाइनली एक सवाल मेरी तरफ से, मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपको कैसे लगा? आप अब ये बताओ।
नहीं, अच्छा था, काफी बढ़िया, अच्छा लगा, और काफी जो सवाल थे वो स्पोर्ट्स के उसके ही थे, तो मुझे ठीक लगा, काफी अच्छा था ये।
चलिए, थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू अमन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
थैंक्स सुप्री,
सुपर, दिल से आपके लिए दुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे हम सभी तरीके से आपसे बात कर रहे थे, बट आई होप हमारी खुशी जाहिर हुई है बिना डांस।
हाँ जी बिल्कुल,
थैंक यू नीरज।
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और अपडेट्स चाहते हैं, तो रीच आउट कीजिए ना हमें। देखिए, फीवर FM ऑफिशियल इज आर हैंडल, और HT स्मार्ट कास्ट, ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, क्लब हाउस पे हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से। बाय बाय।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था Fever FM Production। HT Smartcast।